इंशाल्लाह ताला चलेंगे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, मक्का की गलियों में चलकर देखें।
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني ये बात सच है हकीकत यही है नबी आपको मैंने देखा नहीं है न दौरे मोहम्मद में पैदा हुआ मैं न साथी सफर का कभी बन सका मैं न आका की आवाज तक सुन सका मैं न गज़वात में मुशरिकों से लड़ा मैं मगर सच है ये भी कसम है खुदा की मोहब्बत मुझे आप से है नबी जी सल्ले अला सय्यदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
चलते हैं आज के एपिसोड की तरफ, मक्का की गलियों में चलकर देखें। अल्लाह ताला का वादा है मुश्किल के साथ ही आसानी है। जब रात अंधेरी हो जाए तो दिन निकलने ही वाला होता है। इधर हाल ये हो रहा था कि कुफ्फारे मक्का मेरे नबी की दावत का रास्ता रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे, लेकिन वो आपको रोकने में नाकाम थे। हालांकि इनके पास मजबूत जत्थे थे और मेरे नबी तने तनहा थे। आपके जान निसार साथी जरूर थे, मगर वो भी कमजोर थे और वो सब मिलके भी काफरों के मुजालिम के आगे बंद नहीं बांध सकते थे। ऐसे में मेरे नबी के लिए एक ही सहारा काफी था और वो अल्लाह ताला का सहारा था। जैसे जैसे कुरान उतरता, आपके दिल को तसल्लियां मिलती जा रही थी और इस भरोसे पर आप आगे चल रहे थे कि एक दिन जरूर अल्लाह का दीन गालिब आएगा। वाकई अल्लाह ताला अपने बंदे को बेयारो मददगार कभी नहीं छोड़ता। हाँ, वो आजमाइशों में जरूर डालता है, मगर आजमाइशों के बाद भी वो दिन आते हैं जब अल्लाह ताला मदद फरमाता है और निकाल लेता है। इंसान कभी कभी हिम्मत हारने लगता है, इंसान कभी कभी थक जाता है, मगर वो रब तसल्लियां देता रहता है। वो दिखाता है कि हालात कितने भी कठिन हो जाएं, मैं तुम्हारे साथ हूं और अल्लाह ताला की तरफ से जरूर आसानियां आती हैं। वो फ़ाल उन लीमा युरीद है, जो चाहे करते, वो जिसको चाहे वो कुछ दिखा दे जो दूसरे नहीं देखते और जिसको चाहे वो कुछ सुना दे जो दूसरे नहीं सुनते। रात का अंधेरा हर तरफ छाया हुआ था। लोग अपने अपने घरों में गहरी नींद सो रहे थे। सन्नाटा था मक्का की गलियों में और आमदोरफ्त भी कुछ खास नहीं थी। रात बड़ी पुरसकून थी। कुछ खास बात थी इस रात में। मैंने देखा मेरे नबी सारे दिन की थकन के बाद अब गहरी नींद सो रहे हैं, और आपका मामूल भी यही था, ईशा के बाद आराम फरमाते थे। इतने में मैंने देखा आपके घर की छत खुली है और एक फरिश्ता छत से नीचे उतरा। इस तरह से किसी का आना खिलाफे मामूल था, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। मैं गौर से देखने लगी। आज यकीनन कुछ खास होने वाला है। आने वाले ने मेरे नबी को जगाया। आप उसको पहचानते थे, इसीलिए घबराए नहीं। यकीनन ये जिब्राईल होंगे। आने वाले ने आपको उठाया और मस्जिद हराम में ले आया। मेरे नबी नींद और बेदारी की दरमियानी हालत में थे। आपके अलावा यहाँ और भी लोग सो रहे थे। लोग अक्सर हरम में आके सो जाया करते थे। इतने में कहीं से तीन रोशन नूरानी चेहरे वाले शख्स नमूदार हुए। इनके चेहरों से नेकी और खैर टपक रही थी, और ये समझ आता था कि ये किसी अच्छे ही इरादे से आए हैं। इनका हाल हुलिया भी ऐसा था जैसे कोई शरीफ लोग हो। इनमें से एक ने कहा, वो ये हैं दो आदमियों के दरमियान। वो तीनों मेरे नबी के पास आ गए और आपको उठाकर जमजम कुएं के पास ले आए। वो जो छत से नीचे आया था गालिबन जिब्राईल ही थे। वो इनके सरदार लग रहे थे। वो आगे बढ़े और उन्होंने मेरे नबी का सीना चाक किया, एक बड़ा कट लगा दिया। मैं खौफजदा होके पीछे हटी, मगर मुझे इतनी तसल्ली थी कि ये लोग जो कुछ भी कर रहे हैं इसमें यकीनन खैर ही है। ये जरूर अल्लाह ताला के हुक्म से ही कर रहे हैं, क्योंकि ये अच्छे लोग हैं। और फिर मेरे नबी भी मुतमईन थे। ऐसा नहीं लग रहा था कि इनको कोई तकलीफ हो रही है। जिब्राईल ने मेरे नबी का सीना जमजम से धोया। इसके बाद एक खूबसूरत सोने का तश्त था जिसमें कुछ चीजें पड़ी थी, वो मेरे नबी के सीने में उंडेल दी। इसके बाद मैंने देखा बगैर किसी सर्जरी के, बगैर किसी खून के, बगैर किसी पट्टी के सीने को बंद कर दिया गया, और ऐसे लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इतना बड़ा ऑपरेशन और बगैर तकलीफ के, और इतनी आसानी से और इतनी जल्दी। मेरे नबी किसी किस्म के खौफ का शिकार नहीं थे। आप उठकर बैठ गए जैसे कुछ भी नहीं हुआ। आपको ऑपरेशन करने वालों पर एतमाद था, शायद इसीलिए कोई घबराहट नहीं थी। फिर मैंने देखा एक बेहतरीन सवारी को लाया गया। शायद आप कहीं जा रहे हैं। मैं हैरत से देख रही थी ये कैसी सवारी है। सफेद रंग की, एक खूबसूरत जानवर जो गधे से बड़ा और खच्चर से छोटा था। इस पर जीन कसी हुई थी और लगाम पड़ी हुई थी, इंतहाई खूबसूरत। ऐसा जानवर तो मैंने कभी दुनिया में नहीं देखा। जिब्राइल ने मेरे नबी को उस पर बैठने का इशारा किया। मेरे नबी ने अपना कदम मुबारक अभी उसकी रिकाब में रखा ही था कि वो जानवर शोखी करने लगा, बिदकने लगा। इस पर जिब्राइल ने फरमाया, अरे क्या तू मोहम्मद के साथ ये कर रहा है? तू क्या जाने तुझ पर कभी कोई ऐसी हस्ती सवार नहीं हुई जो इनसे ज्यादा अल्लाह की बारगाह में मुआज्जज हो। मैंने जब ये बात सुनी तो मुझे इस कदर खुशी हुई जैसे किसी ने मेरे गमों पर मरहम रख दिया हो। तो क्या हुआ अगर सारी जमीन वाले आपकी कदर नहीं पहचान रहे? तो क्या हुआ अगर सब आपको ठुकरा रहे हैं? तो क्या हुआ अगर इन्होंने आपके पैगाम को कबूल करने से इनकार कर दिया? तो क्या हुआ कि अगर इनको आपकी कदर नहीं पता? एक अल्लाह तो है जिसके यहाँ आपका मकाम और मर्तबा इतना बुलंद है, और ऐसी कदर है जिस तक कोई पहुंच नहीं सकता। मुझे इस बात से इतनी खुशी हुई कि आखिर किसी ने तो आपके मकाम को पहचान कर ये कहा है जो आपका हक है, जो आप डिजर्व करते हैं। आप वो नहीं जो ये काफिर आपके बारे में कहते हैं, आप दरअसल वो हैं जो जिब्राइल ने आपकी तारीफ की है। आपकी हस्ती इज्जत के काबिल ही है, आपका मकाम बहुत बुलंद है। आपका असल मकाम तो वही है जो रब्बुल इज्जत ने आपको मकाम दिया है। मैंने सोचा काश मैं भी अपनी जिंदगी में अपना मकाम सिर्फ अल्लाह ताला की नजरों में तलाश करूं और ये सीख जाऊं कि दुनिया की लोगों की बातों में कुछ नहीं रखा हुआ। वो बुरा कहें तो उनके कहने से मैं बुरी नहीं होती जब तक अल्लाह ताला ना मुझे बुरा कहे। वो अच्छा कहें तो उनके कहने से मैं अच्छी नहीं हो जाती जब तक अल्लाह ताला के हाँ मैं अच्छी ना हो जाऊं। फिर मैं क्यों लोगों की नजरों में अपना मकाम तलाश करती हूँ और उसी से तसल्ली पाती हूँ? वो अच्छा कहते हैं तो मैं खुश होती हूँ, वो बुरा कहते हैं तो मैं गमगीन होती हूँ। हालांकि उनका अच्छा या बुरा कहना कोई पैमाना नहीं। मैं खुश हो रही थी आज अपने नबी की खुशी देख के। मेरे नबी इस सवारी के ऊपर सवार हो गए। ये सवारी भी बड़ी अजीब थी। इसने जिब्राइल की बात को समझ लिया था और इस कदर रोब में आ गई थी कि सहम के पसीने पसीने होने लगी। इसका सारा जिस्म पसीने से शराबोर था। शायद इसको अब अपनी खुश नसीबी का अंदाजा हुआ है कि इस पर सवार होने वाले कौन है, वो कितनी बाबरकत हस्ती है। इसको भी अपनी किस्मत पे नाज हो रहा है कि आज इसको ये शर्फ हासिल हुआ। ना जाने मेरे नबी से पहले कौन कौन लोग इस पे सवारी करते होंगे। यकीनन वो भी बहुत अजमत वाले लोग होंगे। मगर एक बात तो जरूर है कि जिसने भी सवारी की है इनमें मेरे नबी जैसा कोई नहीं था। मेरे नबी ने अपने आप को सवारी पर सीधा किया। जिब्राइल अमीन मेरे नबी के साथ सवारी पे सवार हो गए। मैंने देखा हैरत अंगेज तौर पर इस सवारी ने सिर्फ एक कदम खला में उठाया और वो एक कदम ही इतनी दूर था जहां तक मेरी निगाह पहुंच सकती थी। अभी यहां थी और अभी वहां। मुझे घुप अंधेरे में दूर सिर्फ एक नुक्ता नजर आ रहा था और उसके बाद वो नुक्ता भी गायब हो गया। आज जो वाकया हुआ है ये पहले कभी नहीं हुआ। ये तो कुछ अलग ही बात है। मैं वहीं इंतजार में बैठ गई। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मेरे नबी वापस आ गए उसी सवारी पे। आपकी सवारी हरम में आके उतरी। अब के मैंने देखा मेरे नबी के चेहरे पर कुछ तशवीश के आसार थे। मैं समझ गई, आप जरूर मेराज के सफर पे गए थे और इसी वजह से अब आप परेशान हो रहे होंगे कि अगर ये बात किसी को बताएंगे तो वो लोग जो पहले ही दीवाना और मजनून कहते हैं, अब तो उनके हाथ में एक शोशा आ जाएगा। वो जो आपकी बातों को अब नहीं मानते, वो बातें जो अकल को लगती हैं, तौहीद की बात को जो समझ आती है, उसको दीवानगी कहते हैं। वो ये बात सुन लेंगे तो क्या कहेंगे? वो तो आपको यकीनन कंफर्म्ड मजनून डिक्लेयर कर देंगे। उनको और क्या चाहिए? वो तो पहले ही ऐसी बहाने ढूंढते थे कि किसी तरह साबित कर दें कि आपको जुनून लाहक है। मक्का में अभी तक सन्नाटा छाया हुआ था। लोग नींद के मजे लूट रहे थे और किसी को कानों कान खबर ना थी कि आज कितना हैरत अंगेज वाकया रोनुमा हुआ है। सुबह होने में अब थोड़ी ही देर बाकी रह गई थी। सुबह होने लगी और मैंने देखा मेरे नबी गमजदा हालत में बैतुल्ला में अलग थलग होके बैठ गए हैं। अब ये कितनी बड़ी मुश्किल उनके लिए खड़ी हो गई है। उधर से अबू जहल चलता हुआ आ रहा है। उसने मेरे नबी को जब देखा कि यहां बैठे हैं और किसी गहरी सोच में हैं, तो आकर करीब बैठ गया। हर बड़े तंजिया अंदाज में बोला, कोई नई बात पेश आ गई है क्या? मेरे नबी तो सच्चों के सच्चे हैं। आप जवाब देते हैं हाँ। वो फौरन बोला, अच्छा वो क्या? मेरे नबी ने फरमाया, बेशक मुझे रात को सैर करवाई गई है। उसने कुछ तजस्सुस से कहा, कहाँ की सैर? फरमाया, बैतुल मकदस की। वो हैरत से बोला, ये फिर आपने हमारे दरमियान आकर सुबह भी कर ली? मेरे नबी बड़े इत्मीनान से बोले, हाँ। अबू जहल बड़ा ही शातिर, बड़ा ही चालाक आदमी था। उसने ये सारी बातें सुन के फौरन आगे से तकजीब नहीं की, क्योंकि उसको ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो वो कौम को बुला लाए और आप अपनी बात बदल दें। वो चाहता था कि सबके सामने आपको दीवाना जाहिर करूं, इसलिए बड़े इत्मीनान से उसने पूछा, अच्छा अगर मैं आपकी कौम को बुला लाऊं तो क्या आप उनके सामने भी यही बातें बताएंगे जो आपने मुझे बयान की हैं? मेरे नबी ने फरमाया, हाँ। ये सुन के वो बहुत खुश हुआ और जोर से कहने लगा, ए बनू काब बिन लुई, ए बनू काब बिन लुई की जमात इधर आओ। उसकी बुलंद आवाज सुन के लोग अपनी अपनी मजलिसों को छोड़ के इसकी तरफ दौड़ पड़े और आकर करीब बैठ गए। अबू जहल बोला, अब बताइए, बताएं अपनी कौम को वो जो सब आप मुझे बता रहे थे। मेरे नबी ने एक लंबा सांस खींचा और फरमाया, मुझे रात को सैर कराई गई है। लोगों ने पूछा, कहाँ की? फरमाया, बैतुल मकदस की। मेरे नबी के चेहरे पे परेशानी थी। आपके लिए कितना मुश्किल वक्त था और मैं इस खौफ से कि आगे क्या होगा परेशान थी। मेरा दिल बैठे जा रहा था। लोगों ने हैरान होकर पूछा, फिर सुबह आप हमारे दरमियान हैं? मेरे नबी ने फरमाया, हाँ। उनके लिए ये हैरत की बात इसलिए थी कि इनके यहां तो मक्का से बैतुल मकदस का सफर एक तरफ का 40 दिन में तय होता था भला इतना लंबा सफर, कोई एक रात में गया भी और वापस भी आ गया। ये ऐसे ही था जैसे मेरे जमाने में कोई कह देता कि वो चांद पे गया है रात को और रात को चांद से वापस भी आ गया सैर करके। उनके लिए ये इतनी ही मुश्किल बात थी समझना। अब की दफा मैंने खौफ के मारे आंखें भींच ली। अब क्या होगा, ये क्या कहेंगे, अब ये क्या करेंगे। मेरे नबी के जवाब देने की देर थी कि कुछ लोग तालियां पीटने लगे और कुछ ने अपना सर पकड़ लिया। कुछ हैरत से मेरे नबी का मुंह तकने लगे। एक शख्स जो पहले बैतुल मकदस जा चुका था बोला, अच्छा वहां की कोई बातें तो बयान करें, आप वहां से आए हमें बताएं तो सही वो कैसा है। लगता है वो चाहता था कि आपका पोल सबके सामने खोल दे। मेरे नबी ने कुछ बातें तो बयान की, फिर कुछ देर के लिए आप गमजदा से हो गए। आपके चेहरे पर स्ट्रेस नजर आने लगा, आप खामोश हो गए जैसे कुछ सोच रहे हो। उसके बाद आपने हर हर बात ऐसे बयान करना शुरू कर दी जैसे आपके सामने बैतुल मकदस रख दिया गया। सुनने वालों में वो लोग भी शामिल थे जो बैतुल मकदस जा चुके थे। वो हैरत ज़दा रह गए, उनको समझ नहीं आ रहा था वो कहाँ से किस बात को पकड़े। वो अच्छी तरह जानते थे कि मेरे नबी कभी बैतुल मकदस नहीं गए, फिर आप ये सारी बातें कैसे बता सकते थे। फिर मेरे नबी ने फरमाया, मैंने वापसी में एक काफला भी देखा था जो बैतुल मकदस से मक्का के रास्ते में था। मैंने गुजरते हुए उनको सलाम भी किया और उनमें से कुछ लोग बोल भी पड़े कि ये तो मोहम्मद की आवाज है। और वो काफला उस मकाम पे था, उनका एक ऊंट उस वक्त गुम हो गया था जिसको एक आदमी ढूंढ के लाया और लाकर काफले वालों के हवाले किया। और अब वो कुछ दिन में ही यहां पहुंचने वाले हैं। उनके काफले के आगे आगे एक गंदमी रंग का ऊंट है और उस पे स्याह टाट पड़ा हुआ है और दो बोरियां उस पे रखी हुई जो स्याह रंग की हैं। सारा मजमा खामोश था, उनको समझ नहीं आ रही थी वो क्या जवाब दें। हाँ एक बात जरूर थी, वो शिद्दत से ये जानने के ख्वाहिशमंद थे कि क्या वाकई जो बातें मेरे नबी ने काफले के बारे में बताई हैं वो सच हैं। वो लोग अच्छी तरह जानते थे कि मेरे नबी ने कभी झूठ नहीं बोला, इसके बावजूद उनमें इस कदर कुफर और इनाद था कि ये इस ताक में रहते थे कि कहीं कोई मौका मिल जाए जिससे वो मेरे नबी पे इतराज करें और खूब प्रोपगेंडा करें और लोगों को आपसे बदजन कर दें। लोग आपस में चहमगोइयां करने लगे। इस वाक्य से काफरों के कुफर में तो इजाफा हुआ ही था, मगर मैं देख रही थी कुछ वो लोग जो नए नए मुसलमान हुए थे शायद उनका ईमान अभी कमजोर था। वो मेरे नबी की बातों को सुनने के बाद एक दूसरे से कहने लगे, ये कैसे हो सकता है जो मोहम्मद ने बातें बताई हैं, हम कैसे इसकी तस्दीक कर लें, हम तो नहीं मानते, हम तो अपने पहले दीन पे ही पलट रहे हैं। या अल्लाह ये क्या हो गया इनको, इतने से इम्तिहान में कामयाब ना हो सके। इनके काफिर दोस्त इनको थपकी देकर शाबाश देने लगे कि तुमने दुरुस्त फैसला किया। उनके नज़दीक ये लोग बड़े अकलमंद थे। और कुछ लोगों को मैंने देखा वो अबू बकर सिद्दीक के घर की तरफ भागम भाग जा रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु उनको घर के सामने ही मिल गए। इन लोगों ने एक लम्हे का भी तवक्कुफ नहीं किया और उनको देखते ही झट से बोले, अब बताएं आप अब मोहम्मद के बारे में क्या कहते हैं? वो कुछ समझ ना पाए तो ये लोग कहने लगे, वो तो कह रहे हैं कि वो रातों रात बैतुल मकदस की सैर करके आए हैं। अबू बकर सिद्दीक कितने समझदार थे, फरमाया क्या उन्होंने खुद से ये बात कही है? सब लोगों ने यक जुबान होके कहा हाँ हाँ खुद कही है। ये सुनकर अबू बकर सिद्दीक ने बगैर किसी तरद्दुद के फरमाया, अगर उन्होंने ये बात कही है तो यकीनन उन्होंने सच कहा है। ये लोग जो अभी अभी बड़े जोश में भागे दौड़े आ रहे थे और समझते थे कि आज तो इनका काम बन जाएगा और आज तो अबू बकर सिद्दीक को भी ईमान से दस्तबरदार होना पड़ेगा, उनके ख्वाबों पे तो पानी फिर गया। उनको अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा था। वो बोले, क्या आप अभी भी उनकी बात की तस्दीक करते हैं कि वो रातों रात गए और सुबह होने से पहले वापस आ गए? अबू बकर सिद्दीक ने इत्मीनान से फरमाया, हाँ मैं तो इससे भी बड़ी बात की तस्दीक करता हूँ कि इनके पास आसमान से सुबह शाम वही आती है। मुझे उनका जवाब इस कदर अच्छा लगा, मैं खुशी से बेख्तियार पुकार उठी, नाराय तकबीर, अल्लाह अकबर, वाकई यही तो ईमान है, यही तो यकीन है जो अबू बकर सिद्दीक को हासिल हो गया। इनको कितना यकीन है कि दूसरा सवाल भी नहीं पूछा, बस जब पता चल गया मेरे नबी की जुबान मुबारक से ये बात निकली है, फौरन उसको कबूल कर लिया। हे काश हम भी ऐसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से निकली हुई बात को कबूल कर लेने वाले होते। हमारे सामने भी हदीस आती है लेकिन हम कैसे कबूल करते हैं उसको? मुझे याद आने लगा कैसे 21वीं सदी में मैं और मेरे साथी बहाने बनाते थे जब हदीस सामने आती थी, उसको रद्द करने के लिए, उससे पीछा छुड़ाने के लिए। अमल में कमी की वजह से हम कैसे इधर उधर से कोई ना कोई उजर तलाश कर लेते थे, और इनको देखो इनके लिए इतना ही काफी है कि मेरे नबी ने फरमा दिया। मेरे जमाने में मेराज पे ईमान रखना, वही के आने पर यकीन रखना, मेरे नबी की रिसालत को मान लेना बहुत आसान था, इसलिए कि मेरे जमाने में मैं उस घर में पैदा हुई थी जहां मैंने अपने बड़ों को इसी पे यकीन रखते हुए देखा, लिहाजा ये कोई बड़ी बात नहीं थी। मगर यहां तो मैं देख रही हूं कि लोगों को मनवाना इस बात पर, सिर्फ इतनी सी बात पर कि आप बैतुल मकदस तक गए हैं और वापस आए हैं, ये भी इतना मुश्किल था। लोग यकीन करने को तैयार नहीं थे क्योंकि उन्होंने ये बातें ना अपने बाप दादा से सुनी, ना उनके माहौल में ऐसी बातें कही गई। ये लोग शिद्दत से काफले का इंतजार कर रहे थे। आखिर वो दिन आ ही गया जिस दिन काफला मक्का में दाखिल होना था। मैंने देखा लोग दोपहर के वक्त से काफले के रास्ते तकने लगने, हत्ता के काफला मक्का में दाखिल हो गया और इसके आगे आगे वही ऊंट था जिसका जिक्र मेरे नबी ने किया था, इसके वही हालात थे जो उन्होंने बयान किए थे। मुशरिकीन तो हक्का बक्का रह गए, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। अब उनको समझ नहीं आ रहा था वो क्या बात कहें, लेकिन फिर भी मानने को तैयार ना हुए। और अभी तो मेरे नबी ने इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ जमीनी सैर को बयान किया था, इसरा के बारे में बताया था जो मस्जिद अक्सा तक का सफर था। अभी तो उनको आसमानों की सैर, मेराज के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। शायद इसकी हिकमत ये हो कि बैतुल मकदस जो इन में से अक्सर लोग देख चुके हैं और उसके बारे में जानते हैं, जब मेरे नबी से सुनेंगे तो कम से कम वो तस्दीक तो कर सकेंगे कि मेरे नबी सच्चे हैं। अगर आसमानों की सैर का बता दिया तो उसकी तस्दीक कौन करेगा? कोई भी आसमानों पे जाके कुछ भी देख के नहीं आया। मेरे नबी ने उनकी अकल की सतह के मुताबिक बात की थी। सातों आसमानों की सैर, ये खबर तो इन लोगों से कभी भी हजम नहीं होनी थी, जबकि मेरे नबी के पास इसके कोई हिस्सी दलाइल भी मौजूद नहीं थे। और ये मेराज की सैर, ये मेराज की खबर, इसको मानने के लिए कोई दलील नहीं चाहिए, इसको मानने के लिए तो दौलत ईमान चाहिए जो कि काफरों के पास नहीं थी। अलबत्ता इसके बाद मेरे नबी अपने साथियों के साथ बैठे तो उनको मेराज का वाकया पूरा मुकम्मल सुनाया और आपके मुखलिस साथियों ने बिला चूंचरा आपकी बात को मान लिया। जाहिर है ये क्यों ना मानते, ये तो मान चुके थे कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, तो मेराज का वाकया कौन सा मुश्किल है। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो दलाइल से समझ नहीं आती, उनके लिए सिर्फ ईमान चाहिए होता है। मैंने अपने नबी की इस बात से बहुत बड़ा सबक सीखा कि लोगों को उनकी ज़हनी सतह के मुताबिक ही बात बतानी चाहिए, जैसे मेरे नबी ने किया। आप अपने साथियों को खुशखबरियां सुना रहे थे, आसमानों के हालात बता रहे थे, अंबिया से मुलाकात की बातें बता रहे थे। अल्लाह ताला ने जो 5 नमाजों का तोहफा दिया था, वो तोहफा उन तक पहुंचा रहे थे। उनको खुशखबरी दे रहे थे कि जो शिर्क से बाज रहा, अल्लाह ताला उसकी बख्शिश कर देगा, इस उम्मत में हर एक की बख्शिश हो जाएगी जो शिर्क से बाज रहा। और आपके साथियों के चेहरे खिल गए थे, वो बड़ी ही दिलचस्पी से आपकी बातें सुन रहे थे। ये वाकई बहुत बड़ा मोजज़ा था और ईमान लाने वाले ही इस पर यकीन कर सकते थे। यहाँ तक आज का एपिसोड मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह ताला कल आपके साथ नेक्स्ट एपिसोड के साथ आएंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ।
ये बात सच है, हकीकत यही है, नबी आपको मैंने देखा नहीं है, न दौरे मोहम्मद में पैदा हुआ मैं, न साथी सफर का कभी बन सका मैं, न आका की आवाज तक सुन सका मैं, न गज़वात में मुशरिकों से लड़ा मैं, मगर सच है ये भी कसम है खुदा की, मोहब्बत मुझे आपसे है नबी जी, सल्ले अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
صلى الله عليه وسلم.